Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Vamsi Vibhushita Kara Navaniradabha Pitambara Darunabimba Phaladharushthat पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने मम न भजनशक्तिः पादयोस्ते नरक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
परम आराध्य भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्यपाद आत्मस्मरणीय ब्रह्मलीन प्रेमपुरी जी महाराज, जिनके कृपा से यह दैनिक सत्संग में हम लोग अवगाहन करते हुए अनेक वर्षों से इसका आनंद ले रहे हैं, आप सभी सत्संगियों का और साथ में जो भी अपने ट्रस्टीगण हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक आप लोगों ने क्या सुना? गीता के 18वां अध्याय। आज तो ये पहला दिन है। हाँ, ये कार्यक्रम कब तक चल रहा? 31 तक। आज 21 तारीख हो गई तो इसमें 10 श्लोक हैं। आज हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनो और कल से आप लोग भी अपने हाथ में कागज रखना। श्री शंकर भगवत पाद विरचिता 10 श्लोकी। न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुर् न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यान योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहम् ममाध्यासहानात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तो निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न सांख्यम् न शैवम् न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमांसकादेर्मतम् वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न चोर्ध्वम् न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापराधिक् वियद्व्यापकत्वात् अखण्डैकरूपस्तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न ह्रस्वम् न दीर्घम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुस्तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञ को वा अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणाम् तुरीयस्तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् अविव्यापकत्वाद्हितत्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत्समस्तम् तदन्यत् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न चैकम् तदन्यद्वितीयम् कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाकेवलत्वम् न शून्यम् न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम् ब्रवीमि। ये 10 श्लोक हैं। इसी के ऊपर हमारे जो आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी, जिन्होंने टीका लिखी, व्याख्या, उसका नाम पड़ा सिद्धांत बिंदु, और उसके ऊपर फिर टीका लिखी स्वामी गौड़ ब्रह्मानंद जी, जिसका नाम है न्याय रत्नावली। 10 श्लोक की आप लोगों ने पहले सुनी नहीं? आत्मसुधा, आत्मसटर जैसा ही है। सिद्धांत बिंदु का थोड़ा यहां पर करेंगे विचार। न्याय रत्नावली थोड़ी कठिन पड़ेगी आप लोगों को, ऐसा मुझे, ऐसे तो आप लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथ सुनते हो तो ये क्या चीज है। मधुसूदन सरस्वती जी सबसे पहले जो ये मंगलाचरण करते हैं, और प्रथम श्लोक से पहले जो इसकी अवतरणिका है उसमें पहले बहुत लंबा चौड़ा विचार हुआ है, कुछ भूमिका बना लेते, आगे फिर जैसा होगा जहां तक होगा वो भी कर लेंगे। इस श्लोक का पाठ रोज करना है तो ये भी एक आपके साधना की कड़ी में जुड़ जाएगा। हर रोज आप लोग नई नई चीजें करते हो तो ऐसे ही ये 10 श्लोकी भी एक आपके साधना की कड़ी होगी। जबकि आचार्य शंकर बोलते हैं पूरे जीवन यापन करने के बाद अंतिम में साधन का प्रयोग कैसे करना है, जिसके लिए साधन पंचक का उपदेश दिया था, वो बोलते अंतिम वाला था, ऐसा मानते हैं। दे दो नित्यम अधीयताम वो आता है। बहुत सारे पंचकात्मक श्लोक भी लिखा, चाहे उसी पंचाक्षर हो, मनीषा पंचक हो, कौपीन पंचक हो, माया पंचक हो, काशी पंचक हो, ये सब पंचकात्मक और अष्टकात्मक, अष्टक अब आत्मषटकम ये अलग है, ये है दश श्लोकी। दस श्लोक होने से एक आचार्य के शत श्लोकी, सौ श्लोक भी लिखे अलग से, एक श्लोकी भी है, एक ही श्लोक। जो भी है घुमा फिरा करके आपको तो जो मिलना था वो तो मिल चुका है, अब तो केवल ये है कि तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्से। जो चिरम, जो देरी हो रही है, तस्य तावदेव चिरम, उसके लिए तो तभी तक विलंब है जब तक कि यावन न विमोक्षे। यहां पर विमोक्षे क्या है, तो शरीर छूटने से पूर्व जो भी प्रारब्ध भोग है उसको भोगो, क्योंकि वो बाण चल पड़ा है। बाकी जो आप ये दैनिक सत्संग कर रहे हो यही आपका खजाना है, और सवेरे सवेरे ये सबसे पहली डोज है आपकी। फिर दिन भर में यहां कितने कार्यक्रम चलते हैं, नीचे कुछ ऊपर कुछ, कहीं चिंतन वाला, कहीं वराह पुराण, कहीं रामायण कथा, कहीं भागवत कथा। ये प्रेमपुरी आश्रम की विशेषता है, यहां पर ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन सवेरे सवेरे जो ये दैनिक कथा है, जो हमारे यहां स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम जो कहा, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। बंबई जैसी नगरी में सवेरे सवेरे 7:30 बजे कोई यहां आकर के कथा सुने, तो इसके लिए आप सबको दाद देनी पड़ेगी। हाँ, आप लोग धन्यवाद के पात्र हो। नहीं तो जो आदमी रात में 11-12 बजे खाएगा, 1-2 बजे सोएगा, वो क्या 7:30 बजे कथा में आ सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। तो ये अपने आत्मकल्याण के लिए जो आपने कमर कस ली है, बाकी तो काम परमात्मा के ऊपर छोड़ो। जो अपना काम है जो हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती ने मंगलाचरण में आचार्य शंकर की स्तुति करते हुए बहुत ही सुंदर बात कही है। मंगलाचरण है ये। श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरम विश्वगुरुम प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानाम बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम। ये शुरू के मंगलाचरण है, और सबसे अंतिम में जो मंगलाचरण किया है तो वहां पर मधुसूदन सरस्वती जी के कोई ब्रह्मचारी रहे होंगे जिनका नाम है बलभद्र। बोले बलभद्र को ज्ञान कराने के लिए और उसके अत्यधिक आग्रह करने पर ही हमने इस दश श्लोकी की व्याख्या की है। एक तो उनके अपने शिष्य बलभद्र निमित्त हो गए, दूसरे फिर उन लोगों के लिए भी दश श्लोकी की व्याख्या लिखी। कौन है वे लोग? वेदांत शास्त्र श्रवणालसानम। वेदांत शास्त्र को यहां पर गौड़ ब्रह्मानंद जी ने बढ़िया नाम दिया। वेदांत शास्त्र में आ गए मूल रूप से शारीरक मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, और उसके ऊपर जो फिर भाष्य भामती टीका, फिर परिमल, फिर कल्पतरु, ये ब्रह्मसूत्र की अलग अलग व्याख्याओं का नाम है। ऐसे टीकाओं को एक तो नाम ही हमें नहीं मालूम, और नाम मालूम भी हो जाए तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और यदि हम प्रवचन में बोल भी जाए तो कुछ बातें आप लोगों के ऊपर ऊपर निकल सकती है। न्याय घटित मीमांसा के दृष्टांत देकर के जब वेदांत की प्रक्रिया समझाई जाती है ना, तो श्रोता लोग समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब विद्वान एव जानाति विद्वज्जन परिश्रमम्, पूज्यपाद ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज के लिए लोग बताते हैं कि महाराज जी बोलते थे, किसी ने कहा हुआ कोई महात्मा काशी से पढ़ के आया बम्बई जैसे नगरी में और पंक्ति लगाने लगा, तो उन्होंने कहा भाई पंक्ति लगाने के लिए काशी ठीक है, पंक्ति को सुलझाना सरलता से बताना हो तो बम्बई में बोलना ठीक है। अब आप लोग अभी एक माता जी, वो शाम को हम प्रवचन करते नीचे बराह पुराण में, बोले अब हम लोगों के मेमोरी कमजोर हो गई, कुछ याद करने के लिए उपाय बताओ। उन्होंने कहा माता जी अब आप तो अवस्था हो गई, अब ऐसा करो कि भगवान से प्रार्थना करो, यदि मुक्त हो गए तो ठीक है, और यदि जन्म लेना पड़ा तो काशी में बनारस में किसी विद्वान के घर में जन्म हो और बचपन से ही संस्कृत व्याकरण पढ़ें, तब जाकर के आपको सारी मेमोरी मिल जाएगी। जो समय गया वो तो गया, अब इस अवस्था में जो हमारे लिए अभी सहज है सरल है जो हम कर सकते हैं, ठीक है हम एक घंटा साढ़े सात से साढ़े आठ बोलते हैं किसी विषय पर, लेकिन हमें इससे क्या मिलता है, हम अपने जीवन में इसको साधना का अंग कैसे बनाए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दस श्लोक की याद हो गया ठीक है, प्रवचन करेंगे। मधुसूदन सरस्वती जी के जो ये टीका है जिसका नाम है सिद्धांत बिंदु, जिसके आधार पर विचार होगा, उस पंक्ति को आप कहां पढ़ोगे, कहां समझोगे, इतनी बातें कहां याद रहेगी। आओ ये तो अच्छा है कि यहां आप ट्रस्टीगण बड़ा अच्छा कार्यक्रम करते हैं जो नेट में डलवाते हैं और सारी दुनिया सुनती है, जिनको भी लाभ उठाना हो, फिर भी इतना समय नहीं है किसी के पास। आजकल पुस्तकें छप रही है, कोई नहीं पढ़ता, दो चार पन्ने पढ़ते सिर दर्द होने लगता है, कहीं डाल देते, पुस्तकें छप रही है, लोगों के पास पैसे है, उपयोग करना है, चलो भाई पुस्तक प्रकाशन में लगाओ, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन, उससे लाभ कौन उठाएगा, ये कहना जरा मुश्किल काम है। अब ये दस श्लोक की आप चलते फिरते याद कर लोगे, अच्छा रहेगा। जितने भी महापुरुष आते अपना अपना विषय रखते हैं, अपनी शैली से बोलते हैं, बस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ये याद रखना है। तो वेदांत शास्त्र श्रवण अलसानाम, ऐसे कठिन ग्रंथों को पढ़ना समझना जिन लोगों के लिए मुश्किल है, उनके लिए बोधाय कुर्वे, उनको बोध कराने के लिए, ज्ञान प्रदान कराने के लिए आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी बड़ी कृपा कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य नवावतारम, शंकराचार्य के अभिनव अवतार, अर्थात ये नहीं कि भगवान शंकर अलग हो और शंकराचार्य जी अलग हो, यहां पर दोनों में तादात्म्य भाव का अर्थ निकाला कि एक ही है, बस जब कैलाश में रहेंगे तो शंकर कहलाएंगे और मृत्यु लोक में आकर के जब वह आचार्य के रूप में उपदेश देते हैं तब उनका नाम पड़ता है शंकराचार्य। जबकि हमारे वेदांतियों में सन्यासी संप्रदाय में शंकराचार्य न बोल करके हम लोग आचार्य शंकर बोलते हैं, उनके सम्मान के लिए आचार्य पहले लगाते हैं और शंकर बाद में बोलते हैं। शंकरम लोक शंकरम, शंकर ही लोक शंकर बनकर के आए, कैसे है तो विश्वेश्वरम, विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते पिचित्ते चैलान चले न व्यवहिते न समीक्षणीय। साक्षात विश्वेश्वर कौन है, काशी विश्वनाथ, उन्हीं का नाम विश्वेश्वर भी है, बनारस में एक जगह है उसका नाम ही है विश्वेश्वर गंज, आप गए होंगे काशी तो मालूम होगा। और विश्व के जो ईश्वर हैं, विश्व के जो शासक हैं, उनको भी विश्वेश्वर बोलते हैं। ऐसे जो शंकर स्वरूप आचार्य शंकर अभिनव अवतार लेकर के लोगों को उपदेश देने के लिए ही इस श्लोक की रचना की है। साथ में वो कैसे हैं, विश्वगुरुम प्रणम्य, विश्वगुरु, इससे छह आस्तिक दर्शन और छह जो नास्तिक दर्शन है उन सभी में इसकी विश्व गुरुता कैसे सिद्ध होगी, तो जितने भी दर्शन है उसमें सबसे शिरोमणि वो है वेदांत दर्शन। ऐसे वेदांत दर्शन के प्रवर्तक जो हमारे गुरुदेव आचार्य शंकर, उनको प्रणाम करके प्रणम्य, और वेदांत शास्त्र श्रवण करने में जो लोग असमर्थ हैं ऐसे लोगों के लिए ये दश श्लोकी के माध्यम से उन्हीं वेदांत के बातों को सरलता से प्रस्तुत करने के लिए यह दश श्लोकी प्रारंभ होती है। अब आगे विचार आएगा, उससे पहले दृष्टा और दृश्य का बहुत विचार चलता है। जितने भी हम लोग बैठे हैं आप इधर देख रहे हो, आपके लिए अभी इस समय मैं हो गया दृश्य और आप लोग हो गए दृष्टा। पहले श्लोक में आ गया न भूमिर न तूयम न तेजो न वायु। एक छोटी सी बात याद रखो, न भूमि, पृथ्वी के द्वारा ऐसे भौतिक देह का निराकरण किया, वहां पर अलग अलग मतों का निराकरण हुआ है, पांच भूतों का निषेध किया है न न कह करके। जो पृथ्वी है वह हमारा शरीर नहीं है, जो शरीर है वो पृथ्वी नहीं है। बना हुआ तो है पांच भूतों का, सबको मालूम है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी का ढेर है, जो जो भी बोलते हैं, लेकिन जो मिट्टी है वो शरीर नहीं, जो शरीर है वो मिट्टी नहीं, ऐसा कह करके अंतिम में अनैकांतिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्धस् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम्। मुख्य जो महावाक्य के द्वारा उपदेश दिया जाता है अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो प्रमापक है, प्रमा उत्पन्न कराने में समर्थ है, ऐसा जो महावाक्य, इससे पहले आप ब्रह्मसूत्र पढ़े हो, सुनते हो, शुरू में क्या आता है अध्यास भाष्य, वहां प्रश्न उठा कि जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है तो आचार्य ने अध्यास भाष्य क्यों प्रारंभ किया। हमारे वेदांत की एक मर्यादा है कि प्रायः करके इसमें गंतव्य का प्रतिपादन पहले होता है, लक्ष्य का प्रतिपादन, तो लक्ष्य का प्रतिपादन करने से पहले जो साधन है कैसे उसको प्राप्त करोगे, ये भी उपाय वेदांत में बताए जाते हैं। एक सामान्य लोक व्यवहार में आप टैक्सी में बैठो, ऑटो में बैठो, उसको भी कहना पड़ता है कि हमें अमुक जगह जाना है, ये तो नहीं कहते जहां भी चलना तुम पूछो मत, चलते रहो, कोई परेशान हो जाएगा कहां जाना चाह रहे हैं। ऐसे यहां पर है तो वही आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है, ये तो लक्ष्य बता दिया, लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति से पहले वो दुख है क्या, इसको जानना जरूरी है। और जो परमानंद है, जिस आनंद से हम वंचित हैं, जिसके लिए दिन रात लालायित हो रहे हैं, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, सब उसी आनंद को पाने के लिए छटपटा रहे हैं। सुबह से शाम तक सारी प्रक्रिया हम लोगों की एक ही चीज के लिए रहती है, जैसे भी हम सुखी रहें, आनंद की प्राप्ति होवे, चाहे वो नहा करके, कपड़े पहन करके, खा पी करके, घूमना फिरना करके, दुनिया के काम करके, कुछ भी करो, उसके मूल उद्देश्य यदि देखोगे, पूछोगे या अपने अंदर झांक के देखो तो एक ही उद्देश्य है सबका, कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे न कभी किसी का, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सबकी इच्छा है। और सबसे बड़ा कष्ट हो गया कि जन्म लेना पड़ा, शरीर में आ गए, ऐसे हड्डियों के ढांचा लेके हम खड़े हैं, पूरा इधर बना दिया बैलेंस, इधर बना दिया, दो पिलर के ऊपर खड़े कर दिए गए, और इसमें बढ़िया आत्म पुराण में आता है ना, इसका वर्णन किया है खूब विस्तार से। और इसके अंदर कभी ये तो अच्छा है कि ऐसी पैकिंग की गई है इसकी, आजकल इंडोस्कोपी आदि करके भले पता लगा लो, नहीं तो भगवान चाहते तो इस पेट के अंदर ही आधा आधा ऐसा करके इसके ऊपर कोई बटन सिस्टम होता, कभी कभी खोल कर देख लेते कहां क्या है, दाल किधर पहुंची, चावल किधर पहुंचा, क्यों नहीं हजम हो रहा है, कहीं पर कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है। बाहर से ऐसी पैकिंग है, नाक बंद करके घूमते हो बदबू आ गई जो हमारे अंदर पहले से पड़े हुए हैं। ऐसे चीजों के होते हुए भी इतना अभ्यास हो चुका है, अब इसमें से हमें उसकी प्राप्ति करनी है जिसको लेकर के टिका हुआ है, जिस शरीर को लेकर हम लोग दिन रात घूम रहे। तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति का मतलब ही होता है कि सामान्य दुखों की निवृत्ति के लिए वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्यास संबंधी दुख है तो पानी पी करके वो दुख दूर हो जाएगा, क्षुधा संबंधी दुख है भोजन करोगे दूर हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि सवेरे पानी पीते हैं फिर थोड़ी देर में प्यास लगती है फिर पीते हैं, ये सब सामान्य दुख की निवृत्ति तो है। हमेशा हमेशा के लिए दुखों की जो निवृत्ति हो ना, उसको बोलते हैं आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। आप लोग बोल जाते हो फटाफट, लेकिन समझना पड़ेगा, जिसमें फिर दोबारा दुख के लौटने की गुंजाइश ना हो। और वह कौन है तो साक्षात जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो सुख और दुख दोनों से परे है। सुख दुख तो मन का धर्म है ना, दुख का अनुभव कहां हो रहा है, मन में, किस तरह से होता है, क्यों होता है, वो सब आगे सिद्धांत बिंदु के माध्यम से सुस्पष्टीकरण होगा। दृग और दृश्य, दृष्टा और दृश्य के विचार करते हुए कह दिया कि दो प्रकार के पदार्थ अत्यंत प्रसिद्ध है दृष्टा और दृश्य के रूप में, ये दो पदार्थ याद रखना।